Krishna Prishthaya Bhutale Shremate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Gurave Gaurachandraya Radhika Tadalyay Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Shri Gaur Nitai Iskan Gambwa mein Sunday ke Sham ke satsang mein aap sabka swagat hai Srila Prabhupada, His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki kripa se विश्व भर में पूरी दुनिया में भगवत गीता यथारूप के आधार के ऊपर लोगों को भगवत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उस भक्ति के साधनों के द्वारा सुख और शांति का जो संदेश है वो पहुंचाया जा रहा है क्योंकि संसार के अंदर दो प्रकार के इंसान होते हैं ये भगवत गीता के 16 अध्याय का एक हम श्लोक है 23वां इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो 16वें अध्याय का नाम है देव असुर विभाग योग देव असुर विभाग योग का अर्थ है दिवाओ इमाओ पुरुष दिवाओ इमाओ सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एवच भगवान कहते हैं जब सृष्टि होती है तो दो प्रकार की होती है एक देवताओं जैसे इंसान होते हैं जिनमें देवताओं के गुण होते हैं और दूसरे असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें डिमोनिक क्वालिटीज होती हैं तो अब इस दुनिया के अंदर हमेशा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस भी रहा राम जी आए तो रावण भी थे तो चैतन्य महाप्रभु आए तो बहुत से जगाई माधाई जैसे लोग थे तो हमेशा दुनिया में ऑलवेज जहां देवताई प्रकार के लोग होते हैं वहां असुरी प्रकार के लोग भी होते हैं। तो इन दोनों में कैसे पता लगे कि देवताई कौन है और असुरी कौन है, इसकी पहचान क्या है, कौन सा नाप दंड है, कैसे पहचाने कि ये असुरी प्रवृत्ति का है व्यक्ति है या ये देवताई पुरुष गुणों वाला पुरुष है। इज ही डिमोनिक पर्सन और इज ही ए पर्सन विथ डिवाइन क्वालिटीज, कैसे पता लगे, टेस्ट क्या है। तो 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको दूं, अभी आपका ये देश है मॉरिशस, यहां भी एक तो ऐसे यहां के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, रहने वाले हैं जो मॉरिशस के कानून का पालन करते हैं, जो नियम है उसका पालन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियम का पालन नहीं करते, दे ब्रेक द रूल्स। तो दो प्रकार के लोग तो हमेशा होते हैं, देर क्रिमिनल्स एंड देर आर दी नॉर्मल जेंटलमैन सिटीजन्स, ऐसे हमेशा होते हैं, हर जगह दो प्रकार के होते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि ये क्रिमिनल है और ये जेंटलमैन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया कंट्री में, क्राइटेरिया क्या है, वन हु फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री इज अ जेंटलमैन, और जो कंट्री के जो देश के नियम का पालन नहीं करता, जैसे देश में कहा है कि नशा नहीं लाना है लेकिन कोई नशे की चीज ले जाएगा तो क्रिमिनल हो जाएगा, तो वन हु फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड ए जेंटलमैन एंड वन हु डज नॉट फॉलो इज कॉल्ड ए क्रिमिनल, अरे पर्सन अपराधी हो गया। सिमिलरली देयर इज अ रूल एंड रेगुलेशन बाय गॉड, भगवान का नेम है उसको शास्त्र कहते हैं, शास्त्र शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर, ये भगवान का नेम है, जो इसका पालन करता है वो देवता, जो इसका पालन नहीं करता है वो डीमन, दिस इज ओनली वन क्राइटेरिया। जो भगवान के बताए हुए शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीता है वो देवताई पुरुष है, जो भगवान के दिए हुए शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर वो डिमोनिक है। तो ये श्लोक पढ़िए, इसमें जो नई रूल फॉलो करते हैं उनका उनके बारे में बताया गया है, तो आप पाठ कीजिए। यह शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। तो पहली लाइन में क्या है, शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, जो लोग शास्त्र की विधि का, विधि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, शास्त्र की नियम का उत्सर्जय मीन्स उल्लंघन करते हैं, जैसे किसी का खेत है उसके अंदर कोई कूद के अंदर जाया, ये हो गया उल्लंघन होना। एनिमल कैन गो बट ए मैन इफ गोज इज नॉट राइट, राइट, उल्लंघन करता है, जो शास्त्र जो भी शास्त्र के नियम का उल्लंघन करता है, ये शास्त्र विधि मुर्सिया यजंते वर्तते काम कारत, वर्तते मतलब काम कर, काम कारत अपनी इच्छा से काम करता है, मुझे जो चाहे वैसे मैं करूंगा, मैं क्यों शास्त्र की बात मानू, शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, मैं क्यों करूं, नहीं मानता हूं शास्त्र को, मुझे जैसे चाहे वैसे मैं करूंगा, जो ऐसे अपने मन मानी करता है, अपनी मन मानी करता है, मन जो मन में आता है वो करता है, शास्त्र की बात नहीं मानता है, अपनी मन में जो आता है वो करता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अपने आपके देश में लोग शास्त्र की बात से काम करते हैं कि अपने मन से करते हैं, ज्यादा लोग अपने मन से करते हैं सब कुछ, शास्त्र से नहीं करते, अपने मन से करते। और मेरा मन में जो आया वो करूंगा, तेरे मन में जो आया वो करूंगा। तेरे मन में आता है कि तुम बूढ़े हो जाओ? नहीं आता, फिर बूढ़े क्यों हो जाते हो? तेरे मन में आता है कि मेरे बाल सफेद नहीं हो? फिर क्यों हो जाते? तो तेरे मन में जल्दी क्या है? सब मूर्ख कहते हैं मेरे को जैसे चाहूंगा करूंगा, वो चाहे वैसे होता तो नहीं है कुछ। जैसे आदमी चाहता है ऐसे कुछ होता है क्या? ना, नहीं होता है। तो जो शास्त्र के नियम का उल्लंघन करके अपनी मन से जैसे आए वैसे करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं न सिद्धि मापनोति न स मतलब उसको न सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलती है, सिद्धि का मतलब क्या है? परफेक्शन। जो भी काम करता है वो काम सिद्ध नहीं होगा। न सिद्धि मापनोति, सिद्धि नहीं मिलेगी। न सुखम, सुख नहीं मिलेगा। न पराम गतिम, और परम गति भी नहीं मिलेगी। सिद्धि इस दुनिया में, सुख इस दुनिया में, और परम गति मरने के बाद, तो तीनों नहीं मिलेंगे। जो शास्त्र के नियम का उल्लंघन करता है, अपने मन से जो चाहे वो करता है, न तो जीवन में सफल होगा, न सुखी होगा, और न ही परम गति को प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान ने दूसरे श्लोक में आदेश दे दिया। ये दूसरे श्लोक का आदेश पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तस्माद् शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसी। इहारस की मतलब इस दुनिया में, ये कहते हैं इस दुनिया में जब जीते हैं काम तो करना ही पड़ेगा भाई। दुनिया में जब तक जीते हैं काम तो करना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, करना ही तो कर पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो काम तो सबको ही करना पड़ेगा जिस दुनिया में। तो भगवान कहते हैं कैसे काम करो? तस्माद्, इसलिए। इसलिए क्यों, किस लिए? शास्त्र का नियम का पालन नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, परम गति नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र के नियम के अनुसार काम करो। तस्मात शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण। शास्त्र का प्रमाण कौन होता है? असल में साधु शास्त्र का प्रमाण होता है। प्रमाण का मतलब प्रूफ। जो शास्त्र के अनुसार जीता है वो शास्त्र का प्रमाण हुआ भाई। शास्त्र के प्रमाण जो है, तस्मात शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, जो काम करना है शास्त्र के अनुसार करो। व्यवस्थितों का मतलब जो नहीं करना है वो नहीं करो, जो करना है वो करो। हरे कृष्णा गौर निताय की गाय, गौर प्रेमानंदे, ये तुम्हारे वृंदावन के गौर निताय है। व्यवस्थितों का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थितों का पता है मतलब क्या है? कोई चीज व्यवस्थित करके रखने का मतलब है, जैसे किचन में रखने का सामान है वो किचन में रखो, जो बाथरूम में रखने का सामान है वो बाथरूम में रखो, ये हुआ व्यवस्थित। हो जो चीज जहां की है वहां रखो भाई। जूते कहां रखना है? वहां जूतों की जगह पे रखो। अगरबत्ती कहां रखनी है? अगरबत्ती की जगह पे रखो। तो ऐसे नियम से चीज को अपने अपने स्थान पे रखो, व्यवस्थित हो। तो कार्य कार्य व्यवस्था मतलब क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, ये शास्त्र से सीख लो। शास्त्र कहता है कि पाप नहीं करना चाहिए तो पाप मत करो। शास्त्र कहता है सुरापान मत करो, शराब मत पियो तो मत करो, ये व्यवस्था। और शास्त्र कहता है कि भगवत गीता को पढ़ो तो भगवत गीता को पढ़ो। शास्त्र कहता है साधु संग करो तो साधु संग करो। तो व्यवस्थिता का मतलब है जो शास्त्र कहता है वो करो, और शास्त्र कहता है मत करो वो मत करो। व्यवस्थितों का अर्थ ये हुआ कि जो करना चाहिए वो करो और जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खाओ और ये कहता है ये चीज मत खाओ। तो दो चीजें होती है हमेशा, एक चीज होती है मेडिसिन दवाई, और एक होता है परहेज। परहेज का मतलब प्रिकॉशन, जो नहीं करना चाहिए। ऐसे शास्त्र में भी कुछ चीजें होती है करनी चाहिए, और चीजें कुछ चीजें होती है नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रों में दोनों है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कार्य कार्य व्यवस्थित हो, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करो। तस्माद शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम। ज्ञातवा का मतलब जानने के बाद, प्रमाणम इसलिए क्या कि आपको शास्त्र कौन सिखाएगा, आप अपने आप नहीं सीखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने आप कोई शास्त्र को नहीं सीख सकता। आपने दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं सीखी है, किसी ने आपको सिखाया तब सीखा। माँ ने बोलना सिखाया तो वो मातृभाषा हो गई, स्कूल में टीचर ने पढ़ना सिखाया तो हमको क ए बी पढ़ना आ गया, क ख पढ़ना आ गया। और जो काम करते खेत में, बाबा ने सिखाया खेत कैसे करते हैं तो खेत करना सीख गए। तो हमको किसी ने सिखाया है तब हम सीखे। तो सब काम तो सिखाने से सीखते हैं, और शास्त्र अपने आप कैसे सीखेंगे? ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है, शास्त्र की शिक्षा का कहीं व्यवस्था नहीं है। पहले गुरुकुल में शास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था थी, अब आपके किसी भी स्कूल में कोई शास्त्र शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनको कहीं गीता पढ़ा, कोई स्कूल है यहां गीता पढ़ाते हैं मॉरिशस में? है क्या कोई स्कूल? नहीं ना, क्यों, कौन पढ़ाएगा शास्त्र का नेम कौन सिखाएगा? मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कौन सिखाएगा? ये कोई जरूरत है कि नहीं है इस बात की? तो डॉक्टर के पास बीमार जाएगा तो डॉक्टर कहेगा तुम्हारी बीमारी का ये दवाई ये खाओ, और ये मत खाना, खाओगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो कुछ रूल्स होते हैं, इसको कहते हैं कुछ डूज और कुछ डोंट, कुछ करो और कुछ मत करो। तो शास्त्र में ऐसे दोनों चीजें हैं, कुछ करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसको जानना चाहिए। यह शास्त्र विधि उत्सर्जा यजन्ते काम का था, उसके बाद आ गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्था ज्ञातवा शास्त्र विधान उक्तम। शास्त्र के विधान को जानना, विधान का मतलब आपको मालूम है, इसको विधानसभा कहते हैं, जो आपकी नेशनल असेंबली होती है इसका नाम है विधानसभा। द नेशनल असेंबली, आपकी कंट्री का नेशनल असेंबली है ना, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में नेशनल असेंबली को, क्या बोलते हैं फ्रेंच में नेशनल असेंबली? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? पालमो। तो जो विधान, इसको कहते हैं विधानसभा, इसको संस्कृत में बोलते हैं विधानसभा। सभा मतलब असेंबली, और विधान का मतलब जो कानून बनाती है, दैट वन व्हिच मेक्स रूल। तो धर्म के जो शास्त्र के ज्ञान है उसको सीखो। किससे सीखें? साधु से सीखो। ये मंदिर काहे के लिए बना, क्या जरूरत है भाई इतना बड़ा जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या है? श्री प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर लोगों को भगवत गीता शास्त्र की शिक्षा देने के लिए है। ये असल में ये मंदिर शास्त्र की शिक्षा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए कैसे करना चाहिए, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भगवान को यहां विराजमान किया है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका विधान क्या है, विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, प्रसाद पकाने की विधि क्या है, प्रसाद भगवान को अर्पण करने की विधि क्या है, प्रसाद लोगों को परोस के खिलाने की विधि क्या है, उसका भी विधि है। तो ये सारा विधान सीखना चाहिए, धर्म के शास्त्र के विधानों को सीखना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, जब शास्त्र के विधानों को सीखेंगे, विधान उक्तम रूल्स एंड रेगुलेशन जो शास्त्र ने बताए हैं, कर्म कर्तुम यहां से उसके अनुसार काम करना चाहिए। जैसे सीधा सा एक भगवत गीता के शास्त्र का एक नियम की बात करते हैं, तीसरे अध्याय में है, जो कुछ भी इस दुनिया में हमको खाने पीने के लिए मिलता है वो सब हम प्रकृति से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। जो कुछ भी खाते हैं नेचर से लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, सब नेचर से आता है, और ये नेचर भगवान के बरसात से सब सब कैसे खेत में कैसे होता है, सब्जी कैसे होती है, पानी से होती है, पानी कहां से आता है, बरसात से आता है। ये शास्त्र गीता का श्लोक है। प्रभुपाद जी से किसी ने ऑस्ट्रेलिया में पूछा कि गीता 5000 साल पहले थी, अब उसका क्या यूज है? तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला कि अनाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव। अब गीता कहती है कि सब लोग अन्न खाते हैं तब जीते हैं, एवरीबडी ईट्स ग्रेन्स, और अन्न बरसात से पैदा होता है। ये सच है कि झूठ है? ये 5000 साल पहले ऐसे था, अब ऐसे, अब और कोई रास्ता है क्या? यही है ना। और बरसात भगवान कहते हैं मेरी मर्जी बजाऊं के नहीं बसाऊं के नहीं बसाऊं, तो बरसात कहां से आएगी? भगवान की इच्छा से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये बरसात का आना, अन्न पैदा करना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। और जो इसको खाता है और भगवान को भोग नहीं लगाता वो पाप खाता है, ये शास्त्र का एक नियम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया के अंदर जो लोग खा तो सब रहे हैं ना रोज, ये दुनिया में सब लोग रोज खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं कि नहीं? बगैर खाने के पीने के कोई रह सकता है क्या? सारी दुनिया खा रही है पी रही है, लेकिन ये शास्त्र का नियम कितने लोग पालन कर रहे हैं कि जो भगवान ने दिया है भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, ये कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग दुनिया में ये करते होंगे बताइए? इसका मतलब एक रोज का नियम हमारा खाना है, वो उस खाने का शास्त्र ने नियम बनाया है कि क्योंकि सब चीजें प्रकृति से मिलती हैं इसलिए प्रकृति का स्वामी भगवान है, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। यज्ञ शिष्टा शनु संतो मुच्यंते सर्व क्लबशीह। ये साधु पुरुष जो है प्रमाण क्या करते हैं शास्त्र में कि भगवान यज्ञ पुरुष है, उसको अर्पण करके जो शेष बचे, जो बाकी बच जाए, शेष बच जाए उसको खाते हैं, इसलिए वो संत हैं, इसलिए उनको संत बोलते हैं क्योंकि शास्त्र के नियम का पालन करते हैं। तो एक ही प्रश्न आपसे पूछते हैं कि दुनिया में इस एक नियम का कितने लोग पालन करते हैं? इसका मतलब लोग असुरी प्रकृति के ज्यादा हैं दुनिया के ऊपर के देवी प्रकृति के? असुरी प्रकृति के लोग ज्यादा हैं। देखने में अच्छे आते हैं, कोट पहना हुआ है, टाई बांधी हुई है, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन शास्त्र के नियम का पालन नहीं करते। इसको प्रभुपाद जी कहते थे फोर, एक एनिमल फोर लेग के ऊपर भागता है और मॉडर्न सिविलाइजेशन फोर व्हील के ऊपर भागती है, लेकिन है एनिमलिस्टिक मेंटेलिटी, पशुवृत्ति है। एक चीज है, ये इसको सोचो, बच्चे अपने बच्चे है ना, उसको हम कहते हैं कोई उसको चॉकलेट दे देना तो हम कहते हैं बेटा अंकल को थैंक यू बोलो, आंटी को थैंक यू बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये थैंक यू सिखाते हैं कि नहीं बच्चों को? नहीं, कि भाई धन्यवाद करो। और इतना सारा भगवान का ले रहे हैं, हाथ जोड़ के धन्यवाद नहीं कर सकते, थैंक यू भगवान नहीं कह सकते? सो सिंपल कि भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो सब कुछ दे रहा है, ये मुफ्त की हवा सांस लेने के लिए 24,000 बार दिन रात में सांस लेते हैं, 24,000 टाइम्स टेकिंग ब्रेथ, सांस ले रहे हैं, कहां से हवा लाते हो? पैसा की मिलती है क्या? गवर्नमेंट देती है, इंपोर्ट करते हो, मुफ्त की मिल रही है। किसने दी है? भगवान ने दी है, वायु देवता दे रहा है, तो धन्यवाद नहीं कर सकते? अब अच्छा है कम से कम वायुदेव के पुत्र हनुमान को बिठा दिया है बाहर के चौकीदारी करता रहे कि बाबा की हवा खाएंगे मुफ्त की तेरे। हाँ वायु पुत्र है ना, यहां बैठा है सबके घर में है? और रात को लाल लाल बत्ती जला देते हैं, अरे अंदर माल खाते हैं उसको खिलाया करो ना कुछ हनुमान जी को। हाँ जैसे हनुमान के मंदिर सबके घर में भोग लगता है क्या? हाँ नहीं खाएगा क्या? फल फूल खा के आएगा अपने आप जाके वन में। इसलिए बोलते हैं राम जी की जो सेना थी ना उसके रुपये भी का भी खर्चा नहीं था, जीरो बजट आर्मी थी। क्या करेंगे, न घर बनाने की जरूरत बानर के लिए और न ही कोई कपड़े की जरूरत, न वर्दी की जरूरत, न न तो एम्युनेशन की जरूरत, न गन्स की जरूरत, पत्थर उठा के मार देते थे, पेड़ उखाड़ के फेंक देते थे, फल फूल खा लेते थे। तो ऐसी जीरो बजट आर्मी थी। तभी हनुमान को भी आपने, अरे भाई हनुमान भगवान राम का भक्त है। मैं एक बात कह रहा हूं, कितनी भगवान ने कृपा की है उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं लोग? Why people are not so grateful? ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये रूल है शास्त्र का, एक सिंपल रूल है, एक रूल सिंपल है। ये गीता का रूल सीधा लिखा पड़ा है। ये पचंती आत्म कारणात् स्थेने व भुंकते। ये जो पहला पार्ट है ये है कि संत वो हैं जो भगवान को यज्ञ में अर्पण करके खाते हैं, और दूसरी लाइन में क्या है, ये पचंते आत्म कारणात्। ये पचंते आत्म कारणात का मतलब अपने खाने के लिए केवल पकाते हैं। भुंजन्ते अघम पापा, भुंजन्ते का मतलब खाते हैं, अघम का मतलब पाप, और पापा का मतलब पाप, मतलब पाप का भी बाप खाते हैं, डबल पाप खाते हैं। तो हमने सोचा कि दो बार क्यों भगवान ने अघम भी लिखा, पाप भी, दो बार क्यों लिखा? केवल पाप लिख देते, अघम क्यों लिखा? तो बहुत से लोग कहते हैं हम थोड़ी पकाते हैं, हम तो बाकी रेस्टोरेंट में जाके खा के आते हैं। हम तो कई बार कैफे में खा लेंगे। तो जो कैफे में खाएगा वो अघम पापा हो जाएगा, वो डबल पाप हो गया, एक तो पकाता ही नहीं है। वो अघम पापा हो गया, डबल पाप वाला हो गया। तो एक सिंपल रूल है, ये हमसे फॉलो नहीं होता है। एक सिंपल रूल है, सूर्य उगने से पहले स्नान करना होता है, हमसे ये एक रूल फॉलो नहीं होता है शास्त्र का। आम बहुत से लोग तो स्नान करते भी नहीं है, सब लोग करते हैं, आपका विचार है दुनिया में स्नान? ए जब से ये जीन के पैंट आए हैं 15 दिन तो वही पहन के घूमते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सब कुछ उसी में। जब से ये पैंट आया है और जीन वाला, और उसमें भी फटा होता है तो बड़ा खुश होते हैं कि ये फटा हुआ है, बहुत बड़ा ड्रामा चालू कर दिया है। इसो सिंपल रूल शास्त्र का फॉलो नहीं करते। खाते तो रोज हैं, भगवान को भोग क्यों नहीं लगाते? एक नियम शास्त्र का अगर पालन करें ना तो बहुत जीवन में परिवर्तन आए। एक नियम ये पालन करें खाने का, अन्न पवित्र मन पवित्र, जैसा अन्न वैसा मन, प्रसाद खाएगा तो पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने सिर्फ इस प्रसाद एक से पूरे दुनिया के अंदर रिवोल्यूशन लाए, प्रसाद से रिवोल्यूशन। एक वो समाचार हमारे पास आता है एप्पल रिवोल्यूशन, आपने सुना है 5 एप्पल रिवोल्यूशन। पहला एप्पल आदम ने, भगवान ने कहा मत खाओ, उसने खाया और उससे पाप शुरू हो गया दुनिया में। अन ऑफर्ड एप्पल खाने से आदम के पाप शुरू हुआ, दोनों पाप का रिवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल ऊपर से गिरते हुए न्यूटन ने एप्पल के, न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने सोचा, उससे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ ग्रेविटी का, ये दूसरा एप्पल। तीसरा एप्पल, एप्पल रिकॉर्ड बना जब गाने का, तब से ये रॉक और रोल म्यूजिक आया, ये एप्पल में ये हो गई रिवोल्यूशन इन म्यूजिक एप्पल के। और फिर एक एप्पल बनाया ये गैजेट फोन वाले ने, तब से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया। ये 4 एप्पल रिवोल्यूशन हो गए, समझ में आए? पहला अनऑफर्ड एप्पल, सिनफुल एक्टिविटीज शुरू हो गई दुनिया में, पाप रिवोल्यूशन। फिर न्यूटन का एप्पल, साइंस का रिवोल्यूशन, विज्ञान का रिवोल्यूशन साइंस। और फिर किसका, एप्पल कंपनी वाले का एप्पल, क्या नाम है एप्पल कंपनी वाले का, कोई है अंग्रेजी नाम लिखा हुआ। ये होगा साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये हो गया टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट। एक प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं होता, पहले दिन में एक एप्पल होता था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भगवान को भोग लगा के लोगों को देते थे, उससे स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन आ गया दुनिया में। ये 5वां एप्पल रिवोल्यूशन है। तो अनऑफर्ड एप्पल से पाप का रिवोल्यूशन, ऑफर्ड एप्पल प्रभुपाद ने बांटा, उससे वर्ल्ड में स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन आया। ये प्रसाद खा के कितने भक्त बने हैं देखो, दुनिया में हम लोगों से पूछते हैं भक्त कैसे बने, बोला संडे फीस्ट के प्रसाद खा के। तो इसका मतलब है एक प्रसाद खाने से कितना बड़ा लाभ होता है, एक शास्त्र का नियम पालन करने से लोगों का जीवन बदल जाता है। एक नियम सिंपल पालो करें कि जीभा से भक्ति शुरू होती है और खाना काम जीभा का है और बोलना काम जीभा का है। तो भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद चखना, ये दो काम करने से हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन लोग क्यों नहीं भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, क्यों नहीं भगवान का भोग लगाना चाहते हैं? क्योंकि अपने मनमानी से खाना चाहते हैं, शास्त्र का नियम पालन नहीं करना चाहते। पर समस्या यह है कि शास्त्र में लिखा है कि क्या भगवान को भोग लगना चाहिए, उनको तो वो जो खाना है वही पकाना है। भगवान के लिए नहीं पकाते, अपने लिए पकाते हैं, आत्म कारणात है, इसलिए पाप है, अगम पापा है। तो हमारा आज के सत्संग से आपको विनती यह है कि पहले शास्त्र को पढ़ना चाहिए जीवन में, जीवन शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। लाइफ मस्ट बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर, शास्त्र फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है शास्त्र। प्रभुपाद जी लिखते हैं अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन भगवत गीता एज इट इज, ये प्रीफेस में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि भगवत गीता हिस्टोरिकल है, इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं एथेंटिक है, बहुत प्रमाणिक है, क्योंकि भगवान के वचन है, इसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। और तीसरा प्रभुपाद जी कहते हैं ये नेचुरल है, भगवत गीता स्वाभाविक है सबके लिए। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसलिए इसको फॉलो करने से सब लोग सुखी हो जाएंगे। द पीपल विल बिकम हैप्पी क्विकली, लोग सुखी हो जाएंगे, इसको फॉलो करने से लोग सुखी हो जाएंगे। तो हम लोगों से पूछते हैं कि आप जब सुखी होते हो, आप जब खुश होते हो तो क्या करते हो? आपके मॉरिशस में कोई शादी होती है, खुशी का कोई मौका होता है तो क्या करते हैं यार लोग? हाँ, मॉरिशस में क्या करते हैं लोग खुशी के मौके पे? हाँ, नाचते हैं और क्या करते हैं? गाते हैं और क्या करते हैं? खाते हैं, यही कुछ करते हैं ना। वो एक बार करते हैं शादी में, फिर सारी उम्र बैठ के रोते हैं। किसी ने बोला वेडिंग और वेल्डिंग में क्या फर्क है? वेडिंग और वेल्डिंग, वेल्डिंग समझते हैं ना, लोहे को जोड़ते हैं। उसने बोला वेडिंग में पहले यूनियन होती है, सारी उम्र चंगारी निकलती है, और वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, सारी उम्र जुड़ जाती है। लोहे का जब जोड़ते हैं तो थोड़ी सी चंगारी निकलती है, फिर जुड़ जाता है। ये हुआ वेल्डिंग, और वेडिंग में पहले तो मुफ्त में जुड़ गए, फिर सारी उम्र चंगारी। चुक, 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 चुक। दोनों में डिफरेंस इतना है। तो ऐसी खुशी जो एक दिन नाचने गाने वाली हो और फिर सारी उम्र रोने वाली हो, उससे रोज नाचना गाना खाना हो, वो अच्छा कि नहीं? तो कृष्ण भावना अमृत संघ में क्या हमारी मेन प्रैक्टिस क्या है, क्या करते हैं हम? What do we do? Most of the time, huh? Chanting, dancing and? Feasting. Nacho, gao, khao, doctor, Hare Krishna. Nacho, gao, khao, danze, kya? Danze, moze. Shante, kya? Chante? Shante, moze, danze, huh? Kya baat hai? Itna acha kaam hai. Natural hai ke nahi hai? स्वाभाविक है कि नहीं है? और भगवान क्या कर रहे, कृष्ण क्या कर रहे? सारा दिन नाच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट डांसिंग। कितना खुश है, सारा दिन नाचता है, नृत्य में, इज ऑलवेज डांसिंग एंड डांसिंग। भगवान ऐसे की भक्ति करना चाहिए जो खुश हो, नाचे गाए खाए। हाँ, तो ऐसा तो बहुत बड़ा स्वाभाविक है, कृष्ण आनंद में है सदा, बांसुरी बजा रहा है, मौज कर रहा है, तो उसके भक्त बनेंगे, खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो आज के दो श्लोक हमने पढ़े 16वें अध्याय के, कि शास्त्र स्क्रिप्चर को फॉलो करने वाला डिवाइन पुरुष है, देवताई देवता है, जो शास्त्र के नियम का उल्लंघन करता है वो डिमोनिक नेचर का है। और हमने कहा कि शास्त्र को फॉलो करने वाले दुनिया में कम है, और शास्त्र के उल्लंघन करके अपने मन से करने वाले बहुत हैं। तो इसलिए भगवान ने आदेश दिया, इसलिए शास्त्र का पालन करो, अपने मन से मत करो, शास्त्र के नियम से करो। और हमने एक ही चीज को आज कहा कि जो खाना है भगवान को भोग लगा के खाओ, एक काम शुरू करो, बाकी सब अपने आप होने लगेंगे। यू स्टार्ट वन थिंग, अदर थिंग्स ऑटोमेटिकली विल फॉलो। सबसे मुख्य ये, क्यों, खाने के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। एक खाने को सुधार देंगे ना तो जीवन सुधर जाएगा। तो शास्त्र का सीखना चाहिए, किससे, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को समझना चाहिए, किससे, प्रमाण, जो दोज हुआर प्रमाण, प्रमाण मीन्स दोज हुआर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग द शास्त्र। तो शास्त्र को कौन फॉलो करते हैं, उन एग्जाम्पल साधु, दे फॉलो द शास्त्र, दे लिव, दे आर लिविंग शास्त्र, दे आर लिविंग तीर्थ। वो जीते जी शास्त्र भी है और जीते जी दे आर लिविंग साधुज आर लिविंग शास्त्र। भागवत स्थाने भागवत गीयते, भागवत पुरुष से भागवत सीखनी चाहिए, भागवत पुरुष से भागवत सीखनी चाहिए। तो साधु भागवत है और साधु तीर्थ है, इज प्यूरिफाइंग। कैसे, भगवान के नाम से पवित्र कौन करता है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं सब पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान का साधु पवित्र कैसे करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए करते हैं। तो आज इन दो श्लोकों से हमें दो बातें सीखनी है, एक तो साधु का संग करना चाहिए और दूसरा शास्त्र को समझना चाहिए। इस जीवन में कम से कम मानव जन्म मिला है दुर्लभ भाग्य से, तो शास्त्र को समझना चाहिए। थोड़ा समय निकाल के, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, घर में नहीं पढ़ाया जा रहा है, कहां बच्चे सीखेंगे शास्त्र, कहां बच्चे सीखेंगे शास्त्र, बच्चों को कहां से, छोटे बच्चों को यह शिक्षा कहां से मिलेगी। तो इसलिए व्यवस्था, ये जो हमारे मंत्र है, ये टीचिंग की व्यवस्था यहां होनी चाहिए। ये संडे के दिन तो बच्चों की यहां शास्त्र की क्लास लगानी चाहिए, बच्चों को यहां बैठ के धर्म के कुछ श्लोक सिखाने चाहिए, कुछ कीर्तन करना सिखाना चाहिए, कुछ ड्रामा करना सिखाना चाहिए। बहुत जरूरी है बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना, क्योंकि कहीं नहीं मिल रही है, न स्कूल में मिल रही है, न शास्त्र कहीं पढ़ाने का कोई विधान नहीं है, तो असुर हो जाएंगे अपने आप, असुरी प्रकृति के लोग बढ़ जाएंगे, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई हम कैसे जिएंगे, थोड़े से भक्त होंगे और साबी चारों ओर से डीमन होंगे तो कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए हम कहो अपने बच्चों को अभी शास्त्र का नियम सिखाना चाहिए। आप डेफिनेटली संडे क्लासेस शुरू करो, जहां भी हमारा छोटा सेंटर है, अपने बच्चों को वहां कम से कम धर्म की बेसिक शिक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। आजकल मीडिया इतना, सोशल मीडिया और नेट के ऊपर इतनी बदमाशी और इतनी खराब बातें चल रही है कि अगर उनको धर्म की शिक्षा पहले नहीं होगी तो वो बचना बहुत मुश्किल है। There's an onslaught of so many illegal, इतनी चीजें illegal मीडिया में चल रही हैं जिसको देख देख के आदमी गलत काम तो जल्दी करने सीखता है, अच्छा काम करना सीखने में देर लगती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन की क्लासेस होनी चाहिए, माता जी की स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए लेडीज की, घर के अंदर धर्म का माहौल वो पैदा करेंगे। छोटा सा मंदिर बना के रसोई तो उनको बनानी है, दे हैव टू कुक, और वो सीख लेंगे घर में प्रसाद भोग लग जाएगा, बच्चों को सिखाएंगे तो अपने आप घर के परिवार वाले लोगों को सबको प्रसाद मिल जाएगा। तो लेडीज क्लास, चिल्ड्रेन क्लास, एक हम गए फिनिक्स में सीनियर सिटीजन क्लास, बहुत अच्छा लगा, कोई 60-70 लोग आए सीनियर, अच्छा है, अब रिटायर हो गए, अब भगवान का कथा सुननी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, दिस इज वेरी गुड। तो जैसे सीनियर, इसलिए आई ऑलवेज रिपीट दिस वन, प्रभुपाद का भागवत का एक पर्पट है, एनी सिविलाइजेशन, कोई भी समाज जिसमें बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा का की व्यवस्था नहीं है, एनी सिविलाइजेशन, इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर द स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, नंबर वन, नंबर टू, लेडीज माताजियों को अगर धर्म की शिक्षा और उनको समाज में सम्मान नहीं है, इफ दे आर नॉट रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, लेडीज का रेस्पेक्ट, थर्ड, सीनियर सिटीजन की जो केयर, इफ दीज थ्री थिंग्स आर नॉट देयर, हु कैन एक्चुअल टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ये तीन चीजें कौन सिखाएगा समाज को कि बड़ों का अदब करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों को सम्मान दो, गिव रेस्पेक्ट टू द सीनियर्स, कौन सिखाएगा? शास्त्र, भगवदगीता का श्लोक है कि शरीर की तपस्या है भगवान की, ब्राह्मण की, साधु की, और माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, इट इज द ऑस्टरिटी ऑफ द बॉडी। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम सोचम आर्जवम शरीरम तप उच्यते ब्रह्मचर्यम शरीर, ये शरीर की तपस्या, यू मे नॉट लाइक इट बट यू हैव टू डू इट। बड़ों को गिव रेस्पेक्ट टू द सीनियर, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, हम भी तो कल बड़े होंगे कि नहीं होंगे। सो इन तीनों को सिखाने के लिए ब्राह्मण चाहिए, साधु चाहिए, तो चौथा साधु या ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मणिकल कल्चर, इज नॉट ब्राह्मण बट ब्राह्मणिकल कल्चर, वो कल्चर जो सबको शिक्षा दे, विधान वो जिस समाज में नहीं है। और पांचवा प्रभुपाद ने लिखा, आपके देश में तो है नहीं, काउ प्रोटेक्शन, गाय नहीं, दूध नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, घी नहीं तो पूजा नहीं, कहां से घी लाएंगे पूजा के लिए? लोग ढूंढते हैं गाय का गोबर, कभी पूजा के लिए नहीं मिलता है, गाय का घी नहीं मिलता है, गाय का दूध नहीं मिलता है। तो फाइव थिंग्स प्रभुपाद, दिस पर्पट इज वेरी पावरफुल पर्पट भागवतम में, फर्स्ट कैंटो में, इवन बिफोर एस्टेब्लिशिंग इस्कान, इस्कान की स्थापना से पहले प्रभुपाद ने यह लिखा है, और दैट सोसाइटी विच डोंट केयर फॉर दिस फाइव, इन पांच का जिस समाज के अंदर सम्मान नहीं है, वो आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड। आज आपके देश का समाचार, मैं एक हमारे मित्र के पास बैठा था, वो बता रहे थे 1.2 मिलियन आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से 300,000 एंड समथिंग एल्डरली पीपल ओवर 60, तो बाकी तो 900,000 बचे ना। अब आने वाले 2025 में 50% ओल्ड हो जाएंगे, 1.6 600,000 ओल्ड हो जाएंगे, अब उनको तो गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, पेंशन देनी है, तो बाकी बच्चे तो आपके है नहीं, एक एक बच्चा है, दो दो बच्चा है, 2025 में आपके देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा, कहां से चलाओगे? काम करने वाले बच्चे तो है नहीं आपके पास, बूढ़े तो हो ही रहे हैं, 50% अगर 60 से ऊपर हो जाएंगे तो खिलाओगे कहां, उनका मेंटेन कहां से करोगे? You need young generation. कि ये आपका प्रॉब्लम बहुत, यानी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन आपके देश का, क्योंकि पेंशन दे रही है ना सबको गवर्नमेंट, और जितना ज्यादा जिएगा उतनी पेंशन डबल होती जाएगी, 80 के बाद जबर ज्यादा हो गई, और 100 से कोई जी गया तो 21,000 रुपीज। बात है क्या, एक तो आपको बच्चे पाल, एक तो बच्चा पैदा नहीं करते हो आप, और दूसरे बच्चे पाल नहीं रहे हो, तो कैसे देश में सुखी रहोगे बताइए ना, ये समाज कैसे चलेगा? ये 24 दूर नहीं है, 25 दूर नहीं है, तो कल आने वाला है, हमारे सामने से, हमारे आंखों के आगे, इसे 1960 से लेके हम देखते आ रहे हैं कि ये साल जा रहे हैं, हमने आंखों से 60 ईयर्स तो हमने देख लिए चले गए। ये भाई 50% अभी एक एक को कैसे मेंटेन करेगा, अपने बच्चों को करेगा कि बूढ़ों को, पैसा कहां से आएगा? सो ये सोसाइटी की समस्या है, बिकॉज देर इज नो स्क्रिप्चर, देर इज नो, आपके जितने भी दादे हैं उसके चार चार पांच पांच भाई थे, और आपके तो घर में दो भाई है ही नहीं, घर में किसी घर में दो भाई नहीं है, मुसीबत तो ये है। एक बहन है या एक भाई है या एक बहन भाई है तो गाड़ी चलेगी नहीं, इट विल बी प्रॉब्लम, यू नीड पीपल फ्रॉम आउटसाइड, और जब बाहर के लोग आएंगे तब आप अपने देश में अकेले हो जाएंगे, क्योंकि देश तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन न होने के कारण ये सब कुछ हुआ। नहीं, बड़ों का देखभाल नहीं, बच्चों की शिक्षा नहीं, नारी का सम्मान नहीं, एक ने शादी टूट गई, इधर से उधर बैठा है, उधर से उधर बैठा है, ये कहां से डाइवोर्स आ गया हमारे समाज के अंदर? वैदिक मैरिज में डाइवोर्स होता ही नहीं है, ये कहां से आ गया? कितना बहुत बड़ा, यहां भी बहुत बड़ा ये दुखद समाचार है, ये वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव है, वो धर्म की शिक्षा नहीं, शास्त्र की शिक्षा नहीं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए कैसे भी घरों के अंदर माताओं की शिक्षा का बंदोबस्त हो। और प्रभुपाद जी एक पर्पट में लिखा है कि माता भावुक होती हैं, उनमें धर्म का भाव ज्यादा होता है, किसी भी मंदिर में किसी भी पूजा में आपको माताएं ज्यादा मिलेंगी, तो माताओं की क्लास अलग रख के उनको धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, उसमें धार्मिक भाव ज्यादा है, ये एक पर्पट है प्रभुपाद जी का। और माता जी की क्लास का टाइम भी प्रभुपाद ने कहा है कि दोपहर को 4-5 बजे जब वो बच्चे स्कूल से आ जाएं, काम सब खत्म हो जाए, तब क्लास होनी चाहिए उनकी। तो ये इतने बड़े मंदिर बने हैं, यहां लेडीज क्लास रखो अपनी, कोई एक दिन लेडीज की क्लास अलग होनी चाहिए, सब लेडीज इकट्ठी हो जो 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 टाइम से आ सकती हैं, एक संडे का बच्चों का क्लास होना चाहिए, धर्म की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।